डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 17, प्रकाशित वाक्य 11-12, सातवीं तुरही, औरत, ड्रैगन और बेटा, 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह प्रकाशित वाक्य 11-12, सातवीं तुरही, महिला, ड्रैगन और पुत्र पर 17-17 है। अध्याय 11 के अंत में श्लोक 14 से शुरू होकर हमें सातवीं तुरही या तीसरी विपत्ति से परिचित कराया जाता है। अध्याय 8 के अंत को याद करें, हमें एक उकाब से परिचित कराया गया था जिसने तीन गुना हाय 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 कहा था और उन्हें अंतिम तीन तुरहियों के साथ जोड़ा था। अब श्लोक 14 याद दिलाता है कि दूसरा संकट बीत चुका है जो अध्याय 9 में था और तीसरा संकट जल्द ही आने वाला है। अब मैं इसे तुरही संख्या 7 में पूरा हुआ मानता हूं जो श्लोक 15 से शुरू होता है। इसलिए 15 अध्याय 11 के अंत तक सातवीं तुरही या सातवें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई जो तीसरी विपत्ति होगी और ऊंची आवाजें थीं स्वर्ग में जिसने कहा, जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 पुरनिये जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरे और परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो है और जो था, हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी सामर्थ पाई है, राज करना शुरू कर दिया है। राष्ट्र क्रोधित थे और आपका क्रोध आ गया था। समय आ गया है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास, भविष्यद्वक्ताओं और तेरे पवित्र लोगों और जो छोटे और बड़े तेरे नाम का आदर करते हैं उनको प्रतिफल दिया जाए और प्रियवी का नाश करने वालों को नाश किया जाए। तब स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया और उसके मंदिर के भीतर उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजली की चमक, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, भूकंप और बड़े ओले गिरे। वे अंतिम छंद फिर से अंतिम निर्णय की कल्पना हैं। और इसलिए सातवीं तुरही के साथ हम स्पष्ट रूप से बिल्कुल अंत में हैं। सातवीं तुरही हमें इतिहास के चरमोत्कर्ष पर ले आई है। ध्यान दें कि श्लोक 15 से शुरू होता है और इसके समर्थन में हम वास्तव में यहाँ जो पाते हैं वह यह है कि हमारे पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि हम कुछ भी घटित होते हुए नहीं देखते हैं, बल्कि इसके बजाय हम किसी देवदूत की आवाज या स्वर्ग में तेज आवाजों के रूप में सुनते हैं और फिर 24 बुजुर्गों को हम उनके भजनों या भाषण में सातवीं तुरही की सामग्री सुनते हैं। लेकिन सातवीं तुरही स्पष्ट रूप से हमें इतिहास के बिल्कुल अंत तक ले आती है और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक श्लोक 15 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से होती है कि इस दुनिया का राज्य अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य बन गया है। अर्थात राज्य और शासन को शैतान और जानवर और इस दुनिया और रोमन साम्राज्य से अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में स्थानांतरित कर दिया गया है। मसीह का शासन अब पूरा हो गया है। अध्याय 4 और 5 में जो स्वर्ग में सत्य था वह अब पृथ्वी पर वास्तविकता है। प्रभु की प्रार्थना, तेरा राज्य आए जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी आए, अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। और रोम के राज्य के विपरीत यह राज्य अब हमेशा हमेशा के लिए शासन करेगा। तो शासकत्व का हस्तांतरण, राज्य का हस्तांतरण जो प्रकाशित वाक्य में प्रमुख विषयों में से एक है, अध्याय 4 और 5 में भगवान का राज्य और संप्रभुता अंतः पृथ्वी पर कैसे साकार होगी, अब राज्य के हस्तांतरण के रूप में अपनी परिणति पाता है। यह पृथ्वी, शैतान और जानवर का शासन अब परमेश्वर और यीशु मसीह के हाथों में है। उल्लेख करने योग्य एक अन्य बिंदु छंद 16 में 24 बुजुर्गों का है और निम्नलिखित इन घटनाओं की एक और व्याख्या और मुहर की आगे की सामग्री प्रदान करते हैं। और मैं सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नंबर एक 24 बुजुर्गों के भाषण में इन अंतिम छंदों के साथ नंबर एक ध्यान दें कि भगवान को उस भाषा में कैसे संदर्भित किया जाता है जिससे हम अध्याय 5 से परिचित हैं। भगवान को सर्वशक्तिमान संप्रभु के रूप में चित्रित किया गया है जिसकी शक्ति अब है संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। उनकी महिमा अब संपूर्ण सृष्टि में फैल गई है। लेकिन ध्यान दें कि उसका वर्णन उस व्यक्ति के रूप में भी किया गया है जो है और जो था। मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं। और जब आप अध्याय 1 और श्लोक 8, अध्याय 1.4 और 1.8 और अध्याय 4 श्लोक 8 में भी वापस जाते हैं तो हम इसे त्रिगुण का एक संस्करण पाते हैं जो है और जो था और जो आने वाला है। जो आने वाला है उसे हम मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य पहले ही आ चुका है। जो आने वाला है वह अब पहले से ही एक वास्तविकता है। भगवान का शाश्वत राज्य एक ऐसे स्थान पर पहुंच रहा है जहां भगवान उनके मसीहा और उनके लोग हमेशा हमेशा के लिए शासन करेंगे। तो उस वाक्यांश के तीसरे भाग की अब कोई आवश्यकता नहीं है जो आने वाला है क्योंकि अब उसका राज्य पहले ही आ चुका है और पूर्ण हो चुका है। श्लोक 15 के शेष भाग भी और श्लोक 17 और 18 के शेष 17 और 18 एक अर्थ में हमें उस चीज से परिचित कराते हैं जो मुझे लगता है कि प्राथमिक विषयगत किस्में हैं जिन्हें पुस्तक के शेष भाग में लिया जाएगा, जहां लेखक कहते हैं विशेषकर 18 में राष्ट्र क्रोधित थे और आपका क्रोध आ गया है जिसे हमने घटित होते देखा, हम न्याय के दृश्यों में घटित होते हुए देखते हैं। मृतकों का न्याय करने और आपके सेवकों भविष्यवक्ताओं और आपके संतों और उन सभी को जो आपके नाम का सम्मान करते हैं बड़े और छोटे और पृथ्वी को नष्ट करने वालों को नष्ट करने का समय आ गया है। यह न्याय के दृश्यों और पुरस्कार और प्रतिशोध के दृश्यों के लिए तैयारी करता है जिन्हें हम अध्याय 19 से 22 में देखेंगे। इसलिए एक अर्थ में मुहर का यह अंतिम भाग 24 बुजुर्गों के भाषण या गीतों के रूप में परिचय देता है। मुख्य किस्में जिन्हें पुस्तक में बाद में अध्याय 19 से 22 में अधिक विस्तार से विकसित किया जाएगा। अब यह हमें सातवीं मुहर के अंत तक लाता है और एक अर्थ में हम इतिहास के अंत तक पहुंच गए हैं। अध्याय 10 से शुरू करते हुए आप महसूस करते हैं कि हम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं। इस भाषा में समय नहीं रहा, विपत्तियों का एक और समूह सात गर्जनाओं को सील कर दिया गया है, समय अब नहीं रहेगा। और अब हम अंतिम चरमोत्कर्ष पाते हैं, सातवीं तुरही दुनिया का राज्य राज्य बन गया है, ईश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए अब संतों को पुरस्कृत करने का समय आ गया है, अब मृतकों का न्याय करने का समय आ गया है और आपको यह समझ में आ गया है कि यह पुस्तक में एक महत्वपूर्ण चरमोत्कर्ष है। इस तरह किताब लगभग यहीं समाप्त हो सकती है। हमें चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया गया है, अध्याय 4 और 5 का लक्ष्य पहुंच चुका है, इतिहास का लक्ष्य अब पहुंच चुका है, समय नहीं रहा, जो आने वाला था वह आ चुका है, उसका राज्य स्थापित हो चुका है। फिर भी हम किताब के लगभग आधे रास्ते पर ही हैं। अध्याय 12 और 13 एक अर्थ में लगभग एक नई दृष्टि की शुरुआत करते प्रतीत होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि डेविड ऑन की टिप्पणी और कई अन्य कार्य वास्तव में अध्याय 11 के श्लोक 19 के साथ एक नया खंड शुरू करते हैं जहां स्वर्ग में भगवान का मंदिर खोला गया था। उसी तरह अध्याय 4 में हमने स्वर्ग को खुला देखा, अब एक बार फिर हम स्वर्ग को खुला देखते हैं। तो कुछ लोगों ने वास्तव में अध्याय 12 और श्लोक 13 से शुरू होने वाले एक नए खंड को देखना शुरू कर दिया है। शायद इसे देखने का तरीका इस तरह है कि प्रकाशित वाक्य एक ही कहानी को दो बार बताता है, और यह इसे देखने का एकमात्र तरीका नहीं है बल्कि एक तरीका है। यह एक ही कहानी को दो बार बताता है। उनमें से एक कहानी अध्याय 4 से 11 में बताई गई है और अब अध्याय 12 से 22 अध्याय 4 से 11 की तरह ही कहानी बताएंगे, लेकिन अब अलग अलग कल्पना का उपयोग करते हुए, और अब अध्याय 1 से 11 की तुलना में अधिक विस्तृत और गहरे तरीके से किया। फिर भी अध्याय 12 और 13 को अक्सर रहस्योद्घाटन के केंद्र बिंदु या पुस्तक के आधार के रूप में वर्णित किया गया है। चाहे ऐसा मामला हो या न हो, अध्याय 12 से 13 स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में हमने पहले ही सुझाव दिया है कि अध्याय 12 और 13 उस संघर्ष को अधिक विस्तार से बताएंगे जो हमने अध्याय 11 में देखा था, जहां दो गवाहों ने अपनी गवाही पूरी की, लेकिन एक जानवर रसातल से बाहर आया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब हमें फिर से जानवर से परिचित कराया जाएगा और अब हमें उस संघर्ष से परिचित कराया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अध्याय 11 में उस संघर्ष का अब अध्याय 11 की तुलना में अधिक विस्तृत और अधिक गहरे तरीके से पता लगाया जाएगा। अध्याय 12 हमें एक ऐसे खंड से परिचित कराता है जिसका मेरा मानना है कि चर्च के संघर्ष के वास्तविक स्रोत की खोज करना प्राथमिक कार्य है। इसलिए अध्याय 2 और 3 से शुरू करते हुए और विशेष रूप से 2 चर्च जो पीड़ित थे क्योंकि उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया था, और अध्याय 11 और अन्य जगहों पर चर्च के पीड़ा और उसके वफादार गवाह के रूप में चित्रण अध्याय 12 और 13 अब तलाशने जा रहे हैं, अधिक विस्तार से चर्च के संघर्ष का सच्चा स्रोत, उस संघर्ष का सच्चा स्रोत जिसका वे अब सामना कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सच्चे सर्वनाशकारी अंदाज में अध्याय 12 और 13 पर्दा उठाएंगे और घूंघट उठाएंगे और भगवान के लोगों को एक विस्तारित दृष्टिकोण में दिखाएंगे, उन्हें दिखाने के लिए एक नए परिप्रेक्ष्य में जब वे दुनिया को देखते हैं और वे पीड़ित होते हैं रोम के हाथों और उनसे समझौता करने से इनकार करने और उसके कारण कष्ट सहने का आह्वान किया गया है। और एक व्यक्ति एंटिपास पहले ही अपनी जान गंवा चुका है और जॉन सोचता है कि और भी बहुत कुछ आना बाकी है। वे इसे कैसे देख सकते हैं? अध्याय 12 और 13 पाठकों को इस संघर्ष के वास्तविक स्रोत और वे किस चीज से संघर्ष करते हैं इसे एक नए परिप्रेक्ष्य से अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए पर्दा उठाते हैं ताकि वे इसे देख सकें और एक नई रोशनी में इसका जवाब दे सकें। अध्याय 12 में हमें 3 प्रमुख पात्रों से परिचित कराया गया है जो अध्याय 12 में दृश्य पर हावी हैं। हमें एक महिला से मिलवाया जाएगा जिसका वर्णन काफी दिलचस्प विवरणों में किया जाएगा। हमें एक ड्रैगन से मिलवाया जाएगा और फिर हमें एक बेटे से मिलवाया जाएगा जो उस महिला का बेटा है। लेकिन अध्याय 12 को देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में लिखा है, और उसने एक बेटे को जन्म दिया, एक नर बच्चा जो लोहे के राजदंड के साथ सभी राष्ट्रों पर शासन करेगा, और उसके बच्चे को परमेश्वर और उसके सिंहासन तक छीन लिया गया। महिला रेगिस्तान में भगवान द्वारा उसके लिए तैयार की गई जगह पर भाग गई जहां 1260 दिनों तक उसकी देखभाल की जा सकती थी, और स्वर्ग में युद्ध हुआ। माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने जवाबी लड़ाई की, लेकिन वह पर्याप्त ताकतवर नहीं था और उन्होंने स्वर्ग में अपना स्थान खो दिया। बड़े अजगर प्राचीन सांप को नीचे फेंक दिया गया जिसे शैतान या शैतान कहा जाता है जो पूरी दुनिया को भटकाता है। उसे और उसके स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तब मैंने स्वर्ग में से एक ऊंचे शब्द को यह कहते हुए सुना कि अब परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार आ गया है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता रहता है नीचे गिरा दिया गया है। उन्होंने मेमने के खून और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की। उन्हें अपने जीवन से इतना प्रेम नहीं था जितना मृत्यु से कतराते। इसलिए हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों आनंद करो, परंतु पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास उतर आया है। वह क्रोध से भर गया है क्योंकि वह जानता है कि उसका समय कम है। जब अजगर ने देखा कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया है तो उसने उस स्त्री का पीछा किया जिसने बेटे को जन्म दिया था। स्त्री को एक बड़े उकाब के दो पंख दिए गए ताकि वह रेगिस्तान में उसके लिए तैयार जगह पर उड़ सके। जब वह सर्प की पहुंच से दूर एक समय, कई समय और आधे समय तक उसकी देखभाल करती रही, तब सर्प ने अपने मुंह से नदी की तरह पानी उगलकर उस स्त्री को पकड़ लिया और उसे धार के साथ दूर कर दिया। परंतु प्रियवी ने अपना मुंह खोलकर नदी को निगलने में स्त्री की सहायता की और अजगर उसके मुंह से उगलने लगा। तब अजगर को स्त्री पर क्रोध आया और वह उसकी बाकी संतानों से, अर्थात जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और गवाही देते हैं, युद्ध करने को गया। वाकई बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वह इस कहानी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करना है, एक महिला और एक अजगर और महिला के बेटे के बीच की बातचीत को भी, और जहाँ तक उनकी पृष्ठभूमि का संबंध है, कुछ विवरणों के बारे में फिर से प्रश्न पूछना। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह कैसे कार्य करता है? यह पहली सदी के पाठकों के लिए किस प्रकार कार्य करता है, जिससे उन्हें उस स्थिति को समझने और समझने में मदद मिलती है जिसमें वे स्वयं को पाते हैं? सबसे पहले पहचान का सवाल पूछ रहा है। पहला यह कि यह महिला कौन है जिसका परिचय हमें अध्याय 12 की शुरुआत में दिया गया है। महिला का वर्णन बहुत ही रोचक शब्दों में किया गया है। उसने सूरज को ओढ़ लिया है, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा है, उसके सिर पर 12 सितारे हैं। पूरे पाठ को पढ़े बिना उत्पत्ति से शुरू करके, लेकिन कुछ अंतर्विधानीय सर्वनाशी साहित्य में भी सूर्य और चंद्रमा की यह भाषा और किसी के सिर पर तारे होना अक्सर कुलपतियों और उनकी पत्नियों के वर्णन से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 37 में, जो मुझे लगता है कि श्लोक 9 है, हमने उत्पत्ति अध्याय 37 और श्लोक 9 पढ़ा। फिर उसने एक और सपना देखा और उसने इसे अपने भाइयों को बताया। सुनो, उसने कहा, मैंने एक और स्वप्न देखा और इस बार सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरी ओर झुक रहे थे और यूसुफ के स्वप्न का वर्णन कर रहे थे। तो इसराइल के 12 पुत्रों, कुलपतियों के साथ सूर्य और चंद्रमा और सितारों पर ध्यान दें, और हम उदाहरण के लिए इब्राहिम के टेस्टामेंट जैसी पुस्तक में एक और सर्वनाश कार्य और अन्यत्र पाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा और सिर के चारों ओर के 12 तारे अक्सर कुलपतियों और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों से जुड़े होते हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद कम से कम इस बिंदु पर महिला इसराइल राष्ट्र के लिए खड़ी है जहाँ से मसीहा आया था, जो स्पष्ट रूप से, जैसा कि हम एक क्षण में देखेंगे, जिस बेटे को वह जन्म देगी वह होगा के साथ पहचान की गई। तो इस बिंदु पर महिला शायद इसराइल राष्ट्र के लिए खड़ी है, लेकिन वह ईश्वर के पुत्र मसीहा को जन्म देती है। और दिलचस्प बात यह है कि महिला बेटे के जन्म के बाद भी एक भूमिका निभाती है। तो महिला शायद केवल इसराइल राष्ट्र से अधिक के लिए खड़ी है, लेकिन भगवान के लोगों की निरंतरता को प्रदर्शित करती है कि वह इसराइल है, लेकिन फिर वह भगवान के नए लोग भी हैं, भगवान के लोग जिसमें यहूदी और गैर यहूदी या चर्च दोनों शामिल हैं, रहस्योद्घाटन का बाद का भाग। तो महिला संभवतः किसी एक विशिष्ट समय अवधि को पार कर जाती है। वह इसराइल है, लेकिन स्पष्ट रूप से वह ईश्वर के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उनका अवतार लेती है, और हमने जॉन को पहले से ही ऐसा करते देखा है, पुराने नियम की भाषा को लेते हुए, जैसे कि पुजारियों का राज्य जो इसराइल पर लागू होता है और अब चर्च पर लागू होता है। परमेश्वर के नए लोग जो इसराइल का विस्तार करते हैं और इसमें हर जनजाति, भाषा और राष्ट्र के लोग शामिल हैं। और मुझे लगता है कि हमें यहाँ महिला को इसी तरह देखना चाहिए। तथ्य यह है कि यह महिला पीड़ित है, ठीक है, मुझे वापस जाने दो। महिला भी कम से कम आंशिक रूप से, हालांकि मैं प्राथमिक और विशेष रूप से नहीं कहूंगी, कम से कम यीशु की माँ मैरी का संकेत दे सकती है, क्योंकि वह बेटे को जन्म देती है। लेकिन संभवतः इसलिए महिला केवल इसराइल राष्ट्र से कहीं अधिक है, बल्कि मैरी को उसके हिस्से के रूप में सुझा सकती है और चर्च को भगवान के लोगों के रूप में भी शामिल करने का विस्तार कर सकती है। तथ्य यह है कि वह फिर से प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। यह एक विशिष्ट पुराने नियम की धारणा थी, जन्म पीड़ा की एक सर्वनाशकारी धारणा जो पीड़ा का संकेत देती है। भगवान के लोगों की पीड़ा जो अब मसीहा की ओर ले जाती है, मसीहा के जन्म की ओर ले जाती है। तो यह पहला चरित्र है, एक महिला जो इसराइल का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अधिक व्यापक रूप से भगवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो पुराने नियम के इसराइल से परे है, लेकिन इसमें भगवान के नए नियम के लोग, चर्च भी शामिल हैं, जो यहूदी और अन्य जातियों से बना है। दूसरा चिन्ह जिससे हमें परिचित कराया जाता है वह एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन जिसे 7 सिर और 10 सींगों के रूप में वर्णित किया गया है। 7 पूर्णता, पूर्णता का संकेत देते हैं, और 10 बड़ी संख्या में पूर्णता का संकेत देते हैं। इसलिए आपको किसी ऐसी चीज की यह तस्वीर मिलती है जो काम करती है महान शक्ति और अधिकार। ड्रैगन एक बार फिर ड्रैगन, जैसा कि हमने अध्याय 11 में जानवर के साथ देखा था, एक आकृति या छवि है जो जॉन के पास पहले से ही एक इतिहास के साथ आती है। यह अपने साथ एक इतिहास लेकर आता है, यह पहले से ही अपने साथ एक अर्थ लेकर आता है, जिसे पूरे पुराने नियम के साहित्य और पूरे पुराने नियम के इतिहास में इसके उपयोग के माध्यम से अपनाया गया है। पुराने नियम के भीतर हमें एक ड्रैगन या समुद्री राक्षस प्रकार की आकृति मिलती है, जो पुराने नियम में, कई भजनों में और भविष्यवाणी साहित्य में एक राज्य या शासक के प्रतीक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, हम अक्सर मिस्र में एक फिरौन को समुद्री राक्षस या ड्रैगन के रूप में चित्रित करते हुए देखते हैं। अन्य यहूदी कार्यों में हमें अक्सर एक ड्रैगन या समुद्री राक्षस मिलता है, जिसका उपयोग दुष्ट, ईश्वर विहीन, दमनकारी साम्राज्यों को चित्रित करने के लिए किया जाता है, जो ईश्वर का विरोध करते हैं और उसके लोगों पर अत्याचार करते हैं। उदाहरण के लिए, भजन अध्याय 74 में, और मैं केवल कुछ उदाहरण प्रदान कर रहा हूँ, एक भजन से और एक भविष्यवाणी साहित्य से, भजन 74 छंद 13 और 14 में, मैं बैकअप लूंगा और 12 पढ़ूंगा। लेकिन आप, हे भगवान, प्राचीन काल से राजा हैं, आप पृथ्वी पर मुक्ति लाते हैं। तू ही था जिसने अपनी शक्ति से समुद्र को चीर डाला, तुमने जल में राक्षसों के सिर तोड़ दिए, तू ही ने लेविथान के सिरों को कुचल डाला। एक और समुद्री राक्षस जिसका संबंध पुराने नियम से है। कुछ लोग तो यह भी कहेंगे कि हम उत्पत्ति की ओर वापस जा रहे हैं। आपने सर्वनाशकारी साहित्य में लेविथान और एक हनोक जैसे अन्य समान जानवरों के बारे में पढ़ा। तूने लेविथान के सिरों को कुचल डाला और उसका भोजन जंगल के प्राणियों को दे दिया। स्पष्ट रूप से समुद्र को विभाजित करने के संदर्भ में समुद्री राक्षस या लेविथान, लेविथान के सिर पर ध्यान दें। एक 7 सिर वाला राक्षस स्पष्ट रूप से यहाँ फिरौन का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस समय मिस्र पर शासक था जब भगवान ने समुद्र को विभाजित किया था और नेतृत्व किया था। इसराइलियों के माध्यम से एक और दिलचस्प पाठ, यशाया अध्याय 51 और श्लोक 9 पुराने नियम के भविष्यवाणी पाठ से एक उदाहरण देता है। लेकिन यशाया अध्याय 51 और श्लोक 9 में हम पढ़ते हैं, और यह भविष्यवक्ता के उस समय की भविष्यवाणी के संदर्भ में है जब भगवान एक नए पलायन का उद्घाटन करेंगे, जहां वह अपने लोगों को निर्वासन से बाहर लाएंगे। वह अपने लोगों को छुटकारा दिलाएगा और पुनर्स्थापित करेगा जो अब एक नए निर्वासन में हैं। अध्याय 51 ईश्वर के लिए एक आह्वान है कि वह एक नया पलायन लाने के लिए उसी तरह कार्य करना शुरू करे जैसे उसने पहले निर्गमन के समय किया था। तो श्लोक 9 शुरू होता है, हे प्रभु की भुजा, जागो जागो, अपने आप को शक्ति से ओढ़ लो। ऐसे जागो जैसे बीते दिनों में थे, जैसे पुरानी पीढ़ियों में थे। क्या तू ही नहीं जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े कर डाला? राहब एक समुद्री राक्षस का दूसरा नाम है। क्या वह आप ही नहीं थे जिसने उस राक्षस को भेदा था? श्लोक 10, क्या तू ही नहीं जिसने समुद्र को अर्यात गहरे जल को सुखा डाला और गहरे समुद्र में सड़क बनाई कि छुड़ाए हुए लोग पार हो जाएं? पलायन की ओर स्पष्ट संकेत। तो फिर फिरौन को एक समुद्री राक्षस राहब के रूप में चित्रित किया जा रहा है जिसे भगवान ने तब हराया था जब उसने इसराइलियों का नेतृत्व किया था, जब उसने उन्हें फिरौन और मिस्रियों से बचाया था और उन्हें लाल सागर के पार ले गया था। अब लेखक यशायाह को इसका पूर्वाभ्यास, एक नए पलायन में इसकी पुनरावृत्ति की आशा है। यह दिलचस्प है, यशायाह का तरगुम इस बिंदु पर यशायाह का अरामी अनुवाद वास्तव में श्लोक 9 में राहब को पाठ में फिरौन के रूप में पहचानता है। तो मुद्दा यह है कि आपके पास एक इतिहास है। मैं अन्य ग्रंथ पढ़ सकता हूँ और सर्वनाशकारी साहित्य में आपके पास एक ड्रैगन या समुद्री राक्षस है जो अराजकता और बुराई, उत्पीड़न और शैतानी शक्ति का संबंध रखता है। पुराने नियम में वह समुद्री राक्षस बार बार मानवीय शासकों और साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की भूमिका निभाता है जो दमनकारी हैं और भगवान और उसके लोगों का विरोध करते हैं। तो जॉन एक शब्द का प्रयोग कर रहा है, उन्होंने एक ऐसा शब्द चुना है जो पहले से ही अपने साथ अर्थ का इतिहास लेकर आता है। इसलिए जब जॉन ड्रैगन या समुद्री राक्षस की इस कल्पना का उपयोग करता है तो वह एक ऐसी छवि का उपयोग कर रहा है जो पहले से ही कुछ विशिष्ट को दर्शाता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह दिलचस्प है कि यदि यह मामला है तो जॉन हमें स्पष्ट रूप से एक अर्थ में शैतान के रूप में इस ड्रैगन की पहचान करके सच्ची शक्ति बता रहा है, जैसा कि वह अध्याय 9 में करता है। श्लोक 9 में ध्यान दें, वह हमें इस महान ड्रैगन के बारे में बताता है, वह प्राचीन सांप जिसे शैतान या शैतान कहा जाता है जो पूरी दुनिया को गुमराह करता है। जॉन स्पष्ट रूप से हमें उत्पत्ति 3 में वापस ले जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे जॉन अब इस ड्रैगन को कह रहा है जिसे वह अध्याय 12 में देखता है, यह वही शैतानी शक्ति है जिसने मिस्र जैसे अन्य दमनकारी, ईश्वर विहीन, मूर्ति पूजक, दुष्ट साम्राज्यों और शासकों को प्रेरित किया। अतीत अब अध्याय 12 में जॉन की अपनी दृष्टि में फिर से सामने आता है। तथ्य यह है कि इस ड्रैगन को पद 4 में एक ऐसी पूंछ के रूप में वर्णित किया गया है जो आकाश से एक तिहाई तारों को उड़ाकर उन्हें पृथ्वी पर फेंक देती है। यह कल्पना डेनियल अध्याय 8 और पद 10 से सामने आती है जहां एक समान घटना होती है। कुछ लोगों ने इसे एक विशिष्ट ऐतिहासिक घटना से जोड़ने का प्रयास किया है, शायद यह शैतान के आदिम पतन की एक छवि है जहां वह राक्षसी प्राणियों को अपने साथ लाता है और तारे खड़े हैं, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य में कहीं और देखा है, तारे अक्सर देवदूत प्राणियों के लिए खड़े होते हैं। तो तस्वीर यह हो सकती है कि उसके पतन के बाद शैतान अपने राक्षसी साथियों को घसीटकर अपने साथ ले आता है। यह संभव है, हालांकि यह यहां हो सकता है कि यह केवल इस क्रूर प्राणी की शक्ति का संकेत है, ड्रैगन की शक्ति जिसे जॉन अब देखता है, जो इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि वह एक तिहाई सितारों को अपने साथ खींच सकता है पूंछ। स्पष्ट रूप से यह एक भ्रम है, हालांकि डैनियल अध्याय 8 और श्लोक 10 पर वापस जाएं। लेकिन फिर तीसरी आकृति का परिचय देने के लिए क्या होता है, ड्रैगन इस महिला का पीछा उसके बच्चे को निगलने के एकमात्र उद्देश्य के लिए करता है। तो जिस महिला के बारे में हमें बताया गया है वह गर्भवती है और वह एक बेटे को जन्म देने वाली है। यह क्या स्पष्ट करता है कि यह मसीहा है, कि यह स्वयं यीशु मसीह है। अध्याय 5 में यहूदा के गोत्र का शेर है और अध्याय 5 में मारा गया मेमना है। जो बात उस पहचान को स्पष्ट करती है वह यह है कि श्लोक 5 में उसे एक बच्चे, एक बेटे, एक नर बच्चे के रूप में वर्णित किया गया है जो लोहे के राजदंड के साथ सभी राष्ट्रों पर शासन करेगा। यह अध्याय 2 और श्लोक 8 का स्पष्ट संकेत है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहीं और यीशु मसीह पर लागू होता है। तो महिला जिस बच्चे बेटे को जन्म देने वाली है वह यीशु मसीह मसीहा से कम नहीं है। मैं अक्सर लोगों को यह बताना पसंद करता हूं कि मैथ्यू 1 और 2 और ल्यूक अध्याय 2 के अलावा यह क्रिसमस कहानी का सबसे विस्तृत विवरण है जो न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। एक कथात्मक रूप में हालांकि यहां हमारे पास यह एक सर्वनाशकारी प्रतीकात्मक कुंजी है, हम यीशु मसीह के जन्म का वर्णन पाते हैं। अब लेखक केवल यह कहकर बहुत कुछ भूल जाता है कि जब पुत्र को जन्म दिया जाता है तो उसे तुरंत स्वर्ग ले जाया जाता है। तो यह लगभग ऐसा है मानो मृत्यु, जीवन और मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान और उत्कर्ष सभी एक घटना में ढह गए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जॉन ने पहले ही अध्याय 5 जैसे ग्रंथों में ईसा मसीह को एक मारे गए मेमने के रूप में चित्रित करके उनकी मृत्यु मान ली है। यह यीशु मसीह के खून को संदर्भित करता है जो मर चुका है और अब जीवित है। जॉन स्पष्ट रूप से मानता है कि इसका एक हिस्सा यह है कि यीशु मसीह की मृत्यु को भी यहां शामिल किया जाना है। लेकिन फिर कहानी इस महिला के बेटे को जन्म देने और अजगर के बेटे को निगलने की कोशिश के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जैसे ही महिला द्वारा बेटे को जन्म दिया जाता है तो अजगर के बेटे को खा जाने और मार डालने के इरादे विफल हो जाते हैं और वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है। तुरंत हमने पद 6 में उस महिला के रेगिस्तान में भाग जाने का वृत्तांत पढ़ा जिसे 1260 दिनों तक वहां रखा गया था। मैं उस पर वापस लौटूंगा क्योंकि श्लोक 13 उसे फिर से वापस लेने जा रहा है। लेकिन मैं जिस बात पर ध्यान देना चाहता हूं वह यह है कि 7 से 12 में हमें एक मध्यवर्ती खंड मिलता है। दूसरे शब्दों में यदि आप 7 से 12 तक निकालें तो कहानी काफी अच्छी तरह से प्रवाहित होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह हस्तक्षेप करने वाला खंड मिल गया है जो इस घटना की और व्याख्या करता है। यह इस बच्चे को निगलने में शैतान या अजगर को विफल करने की और व्याख्या करता है। श्लोक 7 से 12 तक इसका और अधिक वर्णन और व्याख्या की जाएगी। इसकी दोतरफा व्याख्या है। पहला भाग स्वर्ग में एक लड़ाई का एक दृश्य है जहां हमें बताया गया है कि माइकल और उसके महादूत शैतान और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई उम्मीद कर सकता है कि आप इसे पढ़ेंगे। परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों ने शैतान और उसके स्वर्गदूतों के विरुद्ध युद्ध किया। इसके बजाय आप माइकल प्रधान देवदूत और उसके स्वर्गदूतों को शैतान और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ते हुए पाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कोई द्वैतवाद नहीं है। मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि यह शैतान पर ईश्वर की संप्रभुता के बारे में कुछ कहता है। कोई कह सकता है कि परमेश्वर को स्वयं शैतान से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका महादूत माइकल उसके स्वर्गदूतों में से एक शैतान और उसके स्वर्गदूतों को हराने और उसे स्वर्ग से बाहर निकालने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। इन सब के पीछे ईश्वर की संप्रभुता है, लेकिन ईश्वर की शक्तियों और शैतान की शक्तियों के बीच किसी भी द्वैतवादी संघर्ष से कहीं ऊपर है। इसके बजाय ईश्वर इस लड़ाई में शामिल ही नहीं है। लेकिन शैतान को हराने और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकालने के लिए केवल माइकल प्रधान देवदूत और उसके स्वर्गदूतों की आवश्यकता है। अध्याय 10 में लेखक दानियल से अपील करता है। उदाहरण के लिए दानियल अध्याय 10 के अध्याय 13 और श्लोक 21 में हमें प्रधान स्वर्गदूत माइकल का यह संदर्भ मिलता है। श्लोक 13 से शुरू करते हुए मैं श्लोक 12 पढ़ूंगा। डरो मत दानियल, पहले ही दिन से जब तूने समझ प्राप्त करने और परमेश्वर के सामने दीन होने का मन किया, तब से तेरी बातें सुनी गईं और मैं उनके उत्तर में आया हूँ। परंतु फारसी राज्य के राजकुमार ने 20 दिन तक मेरा विरोध किया। तब मीकाएल, जो मुख्य हाकिमों में से एक था, मेरी सहायता के लिए आया, क्योंकि मैं वहां फारस के राजा के यहाँ बंदी था। और उस पाठ का श्लोक 21 भी, श्लोक 21 कहता है, परंतु पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि पाठ की पुस्तक सत्य की पुस्तक में क्या लिखा है। उनके विरुद्ध अर्थात फारस के राजा, फारस के हाकिम के विरुद्ध, तुम्हारे हाकिम मीकाएल को छोड़ कोई मेरा साथ नहीं देता। तो दानियल का अध्याय 10 माइकल के युद्ध करने की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इस मामले में फारस के पीछे राजकुमार या देवदूत के खिलाफ। और अब हम एक बार फिर माइकल को, जॉन को उसमें चित्रित करते हुए पाते हैं। अब वह दिखाने के लिए अपने उद्देश्य के लिए इसे पुनः कॉन्फिगर करता है। अब माइकल एक बार फिर युद्ध कर रहा है, लेकिन इस बार ड्रैगन, समुद्री राक्षस के खिलाफ, जो खुद शैतान से कम नहीं है। साथ ही ये ग्रंथ स्वर्ग से शैतान के निष्कासन के संबंध में यहूदी परंपरा को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं, और विशेषकर स्वर्ग से शैतान का आदिकालीन निष्कासन। यह सबसे अधिक यशाया अध्याय 14 में इसकी उत्पत्ति की ओर इशारा करता है, और वास्तव में 12 से 15 तक। यशाया अध्याय 14 और फिर श्लोक 12 से शुरू करते हुए हम पढ़ते हैं, हे भोर के तारे, भोर के पुत्र, तू किस प्रकार स्वर्ग से गिर पड़ा? तुम्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। तू जिसने एक बार जाति जाति को नीचा दिखाया, तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागणों से भी ऊंचा करूंगा। मैं सभा पर्वत पर, पवित्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों पर सिंहासन पर बैठूंगा। मैं बादलों की चोटियों पर भी चढ़ूंगा और अपने आप को परमप्रधान के समान बनाऊंगा। परंतु तुम अपने आप को कब्र तक, गढ़े की गहराई तक ले आए हो। अक्सर इस पाठ ने स्वर्ग से शैतान के निष्कासन के बारे में अटकलों में भूमिका निभाई, सृष्टि के आरंभ में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहचाने कि जॉन शायद यहूदी साहित्य में स्वर्ग से शैतान के निष्कासन की यही धारणा रखते हैं, और वह इसे एक बहुत विशिष्ट अनुप्रयोग देता है। और सवाल यह है कि ऐसा कब होता है? यह युद्ध और शैतान का स्वर्ग से निष्कासन कब होता है? जॉन ने यह सुझाव देकर इसे एक स्पष्ट अनुप्रयोग दिया है कि यह यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर होता है। श्लोक 11 में ध्यान दें, इसके भजन भाग में लेखक ने कहा, और यह व्याख्या का दूसरा भाग है, वह भजन है श्लोक 10 से 12 में स्वर्ग में ऊंची आवाज, जो इस घटना की व्याख्या करती है। आवाज कहता है, उन्होंने मेमने के लोहू से और अपनी गवाही के वचन से उस पर अर्थात शैतान अर्थात दोष लगाने वाले पर जय पाई है। तो मैं यह मानता हूं कि जॉन हमें बता रहा है कि माइकल और उसके स्वर्गदूतों और शैतान और उसके स्वर्गदूतों के बीच स्वर्ग में यह लड़ाई स्वर्ग की हार का वर्णन करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है, जो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप होती है, जो उसी तरह है जैसे अध्याय 5 में मसीह ने दोबारा विजय प्राप्त की थी और अध्याय 1 में मसीह ने जय प्राप्त की थी, क्योंकि वह मर चुका था और अब वह जीवित है। मसीह यहूदा के गोत्र के शेर के रूप में उसने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त की। उसने ऐसा कैसे कर दिया? क्योंकि वह मेमना है जो मार डाला गया। अध्याय 5 के भजनों में इस बात का जश्न मनाया गया कि यीशु पुस्तक लेने के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से पूरी मानवता से लोगों को अपने राजा और पुजारी बनने के लिए खरीद लिया था। इसलिए मैं यह मानता हूं कि जॉन स्वर्ग से शैतान को निष्कासित करने के इस विचार को अपना रहा होगा, लेकिन वह इसे एक विशिष्ट अनुप्रयोग देता है। वह इसे यह प्रदर्शित करने के लिए एक छवि के रूप में उपयोग करता है कि शैतान अंततः यीशु मसीह के व्यक्तित्व की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पराजित हुआ था। और फिर मुझे लगता है कि अध्याय 10 और 12 इस स्वर्गीय युद्ध की व्याख्या करने के लिए कार्य करते हैं। तो श्लोक 7 से 9 में इस युद्ध की व्याख्या अध्याय 10 से 12 में इस भजन द्वारा की जाती है। यह लड़ाई बुराई पर भगवान की जीत थी और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद भगवान के राज्य की स्थापना हुई थी। इसलिए हमें यहाँ किसी विशेष भविष्य की घटना का संदर्भ नहीं देखना है, न ही जॉन अतीत की किसी मौलिक घटना, किसी रचना या किसी अन्य समय की बात कर रहा है। लेकिन जॉन उस कल्पना का उपयोग कर रहा है और यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण क्या होता है इसका उल्लेख करने के लिए इसे एक विशिष्ट अनुप्रयोग दे रहा है। इसने शैतान की हार का गठन किया। और वास्तव में श्लोक 10 से 12 जो स्वर्गीय युद्ध की व्याख्या करते हैं, इस श्लोक 10 के परिणामस्वरूप प्रदर्शित करते हैं, अब हमारे भगवान का उद्धार और शक्ति और राज्य आ गया है। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु के साथ बुराई की शक्तियों को पराजित करना, शैतान को पराजित करना, भगवान का उद्धार और उसका राज्य बनना शुरू हो गया है। उसके राज्य ने शैतान के साम्राज्य और शैतान के शासन को उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया है। तो अध्याय 12 में श्लोक 11 आगे श्लोक 10 के आधार को निर्दिष्ट करता है। वह मुक्ति कैसे आई है? वह राज कैसे आया? अब मसीह का अधिकार कैसे स्थापित हो गया है? आरोप लगाने वाले को कैसे नीचे गिराया गया है? पद 11 के माध्यम से, मेमने के खून के माध्यम से, यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से और उनके लोगों की वफादार गवाही के कारण निरंतर पीड़ा और यहां तक कि मृत्यु के माध्यम से इस तरह शैतान अब पराजित हो गया है। तो हम फिर से काबू पाने के एक विडंबनापूर्ण दृष्टिकोण की इस अवधारणा से परिचित हो गए हैं। परमेश्वर के लोग कैसे जय पाते हैं? मसीह ने कैसे विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त की? रोम की तरह सैन्य शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि उनके पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से, उनके पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से और यहां तक कि मृत्यु के बिंदु तक उनके अनुयायियों की पीड़ादायक वफादार गवाही के माध्यम से। एक अर्थ में इस खंड में हम जो पाते हैं वह सुसमाचार में यीशु की अपनी शिक्षा में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए मैथ्यू अध्याय 12 में, जहां हमें यह धारणा मिलती है क्योंकि यीशु मसीह अब आते हैं और राक्षसों को बाहर निकालते हैं, मैथ्यू अध्याय 12 में फरीसियों के जवाब में जिन्होंने कहा, ठीक है, आप बीजेबब के नाम पर राक्षसों को बाहर निकालते हैं, स्वयं शैतान का नाम। और यीशु कहते हैं, शक्ति की भाषा का उपयोग करते हुए, राज्य की भाषा का उपयोग करते हुए वह बातें कहते हैं, ठीक है, एक राज्य कैसे खड़ा रह सकता है यदि यह अपने आप में विभाजित है? परंतु वह कहता है, जब तक कोई पहले बलवान मनुष्य को न बांध ले तभी तक मसीह का राज्य स्थापित हो सकता है। और फिर वह कहता है, यदि मैं यीशु मसीह के नाम पर या पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, यदि मैं दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो राज्य आ गया है, भगवान का राज्य आ गया है। क्यों? क्योंकि बुराई की शक्तियों को परास्त करके, जो अंततः यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से होगा, बुराई की शक्तियों को परास्त करके परमेश्वर का राज्य पहले से ही शैतान के राज्य में प्रवेश कर रहा है। हम यहां अध्याय 12 में देखते हैं, विशेष रूप से 10 से 12 तक, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ राज्य पहले ही आ चुका है। परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। मसीह की मृत्यु के माध्यम से शैतान का साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका है और परमेश्वर के लोगों की पीड़ा सहती हुई वफादार गवाही के माध्यम से यहाँ तक कि मृत्यु के बिंदु तक शैतान के साम्राज्य को लगातार झटका लग रहा है। लेकिन श्लोक 12 शेष अध्याय 12 की तैयारी में श्लोक 12 हमें एक महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बताता है, और वह यह है कि इस हार के परिणाम स्वरूप जबकि यह स्वर्ग में खुशी मनाता है, यह पृथ्वी के लिए शोक पैदा करता है, क्योंकि अब शैतान को यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण पराजित कर दिया गया है और शैतान पर मसीह की जीत के प्रतीक के रूप में स्वर्ग में फेंक दिया गया है। यह पृथ्वी, समुद्र और इसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए शोक है। और श्लोक 12 के अंत में कारण शैतान अब जानता है कि उसका समय कम है। वह पहले ही पराजित हो चुका है, लेकिन एक अजगर की तरह है जिसे मार दिया गया है, लेकिन उसकी मौत की पीड़ा में उसे अनुमति दी गई है। जैसा कि कुछ टिप्पणियों में कहा गया है, उसे थोड़ा सा इधर उधर घूमने और समस्याओं और कष्टों का कारण बनने की अनुमति है, और यहाँ तक कि परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु। तो यह चर्च के लिए क्या सुझाव दे रहा है? अध्याय 2 और 3 में चर्च उन लोगों के लिए जो अपनी वफादारी के लिए पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी वफादारी के कारण सताए गए हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने एंटिपस की तरह इसके कारण अपनी जान गंवाई है, यीशु मसीह के लिए उनका वफादार गवाह यह एक अनुस्मारक और जो कुछ हो रहा है उसका विवरण है। खैर, वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि शैतान पहले ही पराजित हो चुका है और उसे अपनी अंतिम मृत्यु के समय बस इधर उधर भटकने की अनुमति है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय कम है और वह जितना अधिक कहर बरपा सकता है उतना बरपा सकता है और जितनी अधिक समस्या पैदा कर सकता है। परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि वह पहले ही पराजित हो चुका है और क्योंकि उसका समय कम है, उसने परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करने और उन्हें मौत के घाट उतारने की अंतिम गतिविधि शुरू कर दी है, और इसलिए इसका उद्देश्य उन्हें अपनी स्थिति को एक नई रोशनी में देखने में मदद करना है। जो लोग रोम के हाथों उत्पीड़न झेल रहे हैं उनके लिए यह एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने के लिए है, और फिर से उन्हें उनकी स्थिति को एक नए नजरिए से वास्तविक सर्वनाशकारी अंदाज में देखने में मदद करने के लिए है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखाई देती हैं। रोम एक विशाल साम्राज्य प्रतीत होता है और उनका सामना करने और एक वफादार गवाह बनाए रखने की कोशिश करना व्यर्थ प्रतीत होता है, और वे जिसे चाहें उसे मौत के घाट उतारने में सक्षम प्रतीत होते हैं। अब प्रकाशित वाक्य 12 को पढ़ने के बाद वे देख पा रहे हैं कि पर्दा उठ गया है, और वे देख सकते हैं कि पर्दे के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है। रोम के साथ उनके शारीरिक संघर्ष का नतीजा एक व्यापक संघर्ष के हिस्से से कम नहीं है, जिसकी उत्पत्ति स्वर्ग में हुई है, जिसमें शैतान को यीशु मसीह के खून से और मसीह की मृत्यु से बाहर निकाल दिया गया और पराजित किया गया, और अब पराजित किया गया है और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, यह जानते हुए कि उसका समय कम है, वह थोड़ा सा लड़खड़ाने में सक्षम है, और यही उस संघर्ष का असली स्रोत है जिसका ईसाइयों को रोमन साम्राज्य के साथ सामना करना पड़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण, वास्तव में इस कहानी की दो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहले कहानी फिर श्लोक 13 में उठाई जाती है। माइकल और उसके महादूतों के बीच लड़ाई के रूप में शैतान को इस बच्चे को निगलने से रोकने और शैतान को स्वर्ग से बाहर निकालने पर एक और टिप्पणी प्रदान की गई है, और इन भजनों के माध्यम से इसकी और व्याख्या की गई है जो इंगित करता है कि इसका परिणाम अब की स्थापना है, यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से भगवान का राज्य, और स्वर्ग से शैतान के निष्कासन का मतलब है कि उसका समय कम है और वह भगवान के लोगों को नष्ट करने का आखिरी प्रयास कर रहा है। अब हम कथा को फिर से शुरू करते हैं, शैतान, बेटे और महिला की कहानी। श्लोक 13 में अब हमें उस महिला से परिचित कराया गया है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद हमें वही महिला मिलती है जो शायद पहले दो में उसकी पीठ के वर्णन की निरंतरता में इंगित करती है। यह तीन छंद अब वही महिला परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अब इसमें हर जनजाति और भाषा के लोग शामिल हैं, जो अब चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कहानी कैसे विकसित होती है। सबसे पहले ड्रैगन उसका पीछा करने का फैसला करता है। बेटे तक पहुंचने में नाकाम रहने के बाद अब वह महिला के पीछे जाता है, लेकिन होता यह है कि जाहिरा तौर पर ड्रैगन भी उस तक पहुंचने में असफल हो जाता है। यहां लेखक ने महिला का रेगिस्तान में पीछा किए जाने और रेगिस्तान में उड़ने के लिए बांस के पंख दिए जाने का वर्णन करते हुए पुराने नियम के निर्गमन की कल्पना को चित्रित करना शुरू किया है। बांस की तरह पंख दिए जाने और रेगिस्तान में जाने की वह भाषा निर्गमन की कहानी को फिर से याद दिलाती है, और हम पहले ही उससे परिचित हो चुके हैं, फिरौन के सहयोग से जानवर और अजगर के संदर्भ में निर्गमन की कहानी से। यहाँ निर्गमन कल्पना जारी है। परमेश्वर के लोगों का प्रतीक स्त्री को अब दिया गया है, जैसा कि इज़राइल राष्ट्र को दिया गया था। रेगिस्तान में जाने के लिए एक उकाब की तरह पंख दिए गए थे। यहाँ रेगिस्तान को श्लोक 14 में स्पष्ट रूप से रखने, सुरक्षा और संरक्षण के स्थान के रूप में चित्रित किया गया है। निर्गमन अध्याय 19 और पद 4 में हम परमेश्वर को इसराइलियों से यह कहते हुए पढ़ते हैं कि मैंने तुमको उकाब के पंखों पर चढ़ाकर ऊपर उठाया। और इसलिए अब हम पाते हैं कि महिला को बांस के रूप में पंख दिए जा रहे हैं। तो पलायन का मूल भाव जारी है, और उसी अस्थाई कल्पना पर भी ध्यान दें। श्लोक 6 में 1260 दिन पहले और अब समय समय और डैनियल से आधा समय। और जैसा कि हमने पहले कहा है, ये संभवतः ठीक उसी समय अवधि का संदर्भ दे रहे हैं, अर्थात चर्च के अस्तित्व की पूरी अवधि पहली शताब्दी में एशिया माइनर के चर्चों से शुरू हुई। इस पूरी अवधि को 1260 दिनों के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे डैनियल की ओर संकेत स्पष्ट हो जाता है। यह समय समय और आधा समय जो डैनियल के लिए एक और संकेत है, लेकिन समय की एक अवधि का सुझाव देता है जो तीव्र लेकिन छोटी है। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक समय जो 7 की पूर्ण संख्या से कम हो जाता है। यह 7 का केवल आधा हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अध्याय 12 की घटनाएं लगभग अध्याय 11 की घटनाओं के ठीक उसी समय पर घटित होती हैं। रेगिस्तान में संरक्षित की जा रही महिला की छवि अध्याय 11 में दो गवाहों के साथ एक ही समय में घटित हो रही है। दूसरे शब्दों में इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि लेखक विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्च के अस्तित्व और चर्च के कार्य का वर्णन कर रहा है। चर्च को एक ऐसे मंदिर के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे मापा जाता है, जो सताए जाने के बावजूद अपना संरक्षण दिखाता है। चर्च को दो गवाहों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो विरोध, उत्पीड़न और यहां तक कि मृत्यु के सामने भी अपने वफादार गवाह का वर्णन करते हैं। और अब चर्च को एक महिला के रूप में वर्णित किया गया है जो रेगिस्तान में भाग जाती है और स्वयं शैतान के विरोध के बावजूद संरक्षित और सुरक्षित रहती है। इस कहानी में एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि जिस तरह से अजगर महिला को खत्म करने की कोशिश करता है, वह अपने मुंह से बाढ़ या नदी उगलने के माध्यम से होता है। और स्पष्ट रूप से हम सर्वनाशकारी प्रतीकवाद के दायरे में हैं। निश्चित रूप से कोई यह सुझाव नहीं देना चाहेगा कि चर्च के इतिहास में किसी समय एक अजगर घटना स्थल पर आया और उसने पानी डाला और उसे अपने मुंह से उगल दिया। लेकिन स्पष्ट रूप से यह प्रतीकवाद एक बार फिर शैतान द्वारा परमेश्वर के लोगों का विरोध करने के प्रयास का सुझाव देता है। वह बेटे तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए अब वह महिला के पीछे जाता है और अब परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए चर्च यहूदियों, यहूदियों और अन्य जातियों से बना है। अब वह अपने विरोध का प्रतीक बनकर बाढ़ ला देता है। प्रायः पुराने नियम में हम बाढ़ की भाषा को परमेश्वर के लोगों के उत्पीड़न के आलंकारिक रूप में देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है और मेरी राय में मुझे लगता है कि इसे लाल सागर की छवि को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखना शायद सही है, जहां लाल सागर को एक बाधा के रूप में देखा जाता था, वहीं लाल सागर को परमेश्वर के लोगों के लिए खतरे के रूप में देखा जाता था। यशाया अध्याय 51 और श्लोक 9 पर वापस जाएं जो हमने पढ़ा था, जहां लाल सागर को समुद्री राक्षस के घर के रूप में देखा गया था और परमेश्वर ने लाल सागर पार करते समय समुद्री राक्षस को हरा दिया। तो एक बार फिर पानी के इस उछाल को एक तरह से लगभग पलायन की पुनरावृत्ति के रूप में देखा जा सकता है। जिस प्रकार यशायाह 51 के अनुसार लाल सागर समुद्री राक्षस का घर था, उसी प्रकार यह परमेश्वर के लोगों के लिए खतरा था, उसी प्रकार इसने परमेश्वर के लोगों के लिए एक बाधा प्रदान की और उनकी सुरक्षा को खतरा, उनकी आजीविका को खतरा, उनके जीवन को खतरा। उसी तरह अब शैतान एक बार फिर पानी की ऐसी धारा बहाकर परमेश्वर के लोगों को विफल करने की कोशिश कर रहा है जो उन्हें डुबाने, उन्हें नुकसान पहुंचाने और उनके जीवन और उनके अस्तित्व को खत्म करने के लिए है। फिर भी सच्चे प्रतीकात्मक ढंग से हमने पढ़ा कि उसे भी विफल कर दिया गया और यहाँ तक कि पृथ्वी भी प्रतीकात्मक प्रकार की कल्पना में खुलती है और पानी को निगल जाती है। इससे पता चलता है कि शैतान का इस महिला को नष्ट करने का प्रयास अध्याय 12 के शुरुआती भाग में अपने शिकार को निगलने में सक्षम होने से विफल हो जाने के बाद बेटा अब उस महिला के पीछे जाता है जिसे वह नष्ट करने में सक्षम होने से भी विफल हो गया है। तो आगे क्या होता है? ड्रैगन अपनी संतान के पीछे जाने का फैसला करता है और इसलिए हमारे यहाँ यही है। मुझे लगता है कि संतानें भी चर्च या ईश्वर के लोगों का प्रतीक हैं। ध्यान दें कि श्लोक 12 के अंत में उनका वर्णन कैसे किया गया है। उसकी संतानें वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती हैं और यीशु की गवाही पर कायम रहती हैं। प्रकाशित वाक्य में कहीं और चर्च का वर्णन बिल्कुल इसी तरह किया गया है और अध्याय 3 और 4 में उसे क्या करना चाहिए था। इसलिए स्पष्ट रूप से महिला की संतान का मतलब चर्च का प्रतिनिधित्व या प्रतीक होना भी है। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि जाहिर तौर पर ड्रैगन उन तक पहुंचने में सक्षम है। हम उसे देखेंगे। मुझे लगता है कि अध्याय 13 में यही चल रहा है। मैं थोड़ी देर में इसका परिचय दूंगा। लेकिन दूसरे शब्दों में हमारे सामने यह अजीब तस्वीर है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिला ईश्वर के लोगों, चर्च का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वह रेगिस्तान में वैसे ही संरक्षित है जैसे इसराइल के पलायन के समय था। फिर भी उसके बच्चे परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जाहिर तौर पर शैतान उन तक पहुंचने में सक्षम है। तो क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि एक बार फिर हम जॉन को भगवान के लोगों और चर्च को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हुए देखते हैं। एक ओर महिला की तरह चर्च को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है, दूसरी ओर अपने बच्चों की तरह चर्च भी शैतान के हाथों उत्पीड़न और यहां तक कि मौत के अधीन है जो भगवान और उसके लोगों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए कुछ कुछ उस मंदिर की तरह जिसे हमने अध्याय 11 में देखा था। मंदिर की माप की गई जिससे उसकी सुरक्षा का पता चलता है। फिर भी बाहरी अदालतों को अन्य जातियों के लिए फेंक दिया गया, यह सुझाव देते हुए कि यह अभी भी उत्पीड़न के अधीन था। एक ओर दोनों गवाह स्पष्ट रूप से अजेय थे जो ईश्वर द्वारा उनके संरक्षण और संरक्षण का सुझाव दे रहे थे, फिर भी दूसरी ओर वे कहानी के अंत में असुरक्षित प्रतीत हुए जहां उन्हें जानवर द्वारा मार डाला गया था, यह सुझाव देते हुए कि वे अभी भी जानवर के हाथों उत्पीड़न और मृत्यु के अधीन थे। तो मुझे लगता है कि यहां भी वही चल रहा है। शैतान अंतः चर्च को नष्ट करने में सक्षम नहीं है, इसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखा गया है। हालांकि वह अभी भी अपने लोगों को मौत के घाट उतार कर उन पर अत्याचार करने में सक्षम है, फिर भी विडंबना यह है कि रहस्योद्घाटन के संदर्भ में जॉन स्पष्ट है कि संतों पर विजय पाने का यही तरीका है। विडंबना यह है कि वास्तव में वे इसी तरीके से शैतान को हराते हैं। उनकी मृत्यु के माध्यम से और उनकी पीड़ा के कारण वफादार गवाह। तो चर्च संरक्षित है, फिर भी इसे अभी भी सताया जाता है। शैतान को कहर बरपाने और अपने सदस्यों पर अत्याचार करने की अनुमति है, फिर भी वह अंततः इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं है। एक बार फिर ध्यान दें कि कैसे प्रकाशित वाक्य 12 चर्च के संघर्ष और सच्चे संघर्ष के वास्तविक स्रोत और प्रकृति को उजागर और उजागर करता है। वे रोमन साम्राज्य पर नजर डालते हैं और उनका सामना उसके दावों से होता है। उनमें से कई लोग समझौता करने से इनकार करने के कारण पीड़ित हैं। एक व्यक्ति को मौत की सजा दे दी गई है और अब अन्य लोग भी इसकी जद में आने वाले हैं। इसलिए वे बाहर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या ऐसी राक्षसीता के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास करना वास्तव में इसके लायक है। और प्रकाशित वाक्य 12 जो करता है वह पर्दा उठाता है। उन्हें पर्दे के पीछे देखने की अनुमति दें ताकि उन्हें पता चले कि आपके संघर्ष का असली स्रोत स्वयं शैतान है। शैतान ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मारने की कोशिश की लेकिन असफल हो गया, और शैतान अब परमेश्वर के लोगों के पीछे जा रहा है। कौन हां वह कहर बरपा सकता है और वह उन पर अत्याचार करने और उन्हें मौत के घाट उतारने में सक्षम होगा, लेकिन आखिरकार चर्च की रक्षा की जाएगी। अंततः परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहेंगे, और इसलिए अब उस नए दृष्टिकोण के साथ वे अपनी स्थिति को एक नई रोशनी में समझने और देखने में सक्षम होंगे। उन लोगों के लिए जो अपनी वफादार गवाही के कारण उत्पीड़न सह रहे हैं, विशेषकर अध्याय 2 और 3 में दो चर्चों के लिए, यह उनकी वफादार गवाही को बनाए रखने और दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहन का एक स्रोत होगा। लेकिन अन्य चर्चों के लिए यह समझौता करना बंद करने और इसके बजाय एक स्टैंड लेने के लिए एक चेतावनी होगी। और अपनी वफादार गवाही को बनाए रखना है, भले ही इसके लिए मौत ही क्यों न आनी पड़े। संभावित परिणामों के बावजूद अध्याय 12 इस तथ्य के अलावा स्पष्ट करता है कि शैतान पहले ही पराजित हो चुका है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से शैतान पराजित हो गया है, और उसे परमेश्वर के लोगों के साथ जो करने की अनुमति है वह उसकी मृत्यु की पीड़ा में उसका अंतिम प्रयास मात्र है। परमेश्वर के लोगों को इधर उधर भटकाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का उनका अंतिम प्रयास। अब अगले भाग में मैं एक तरह का बैकअप लेना चाहता हूं। हमने पाठ के कई विवरणों पर गौर किया है, लेकिन मैं फिर से अध्याय 2 की कहानी को 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना चाहता हूं, और मैं सुझाव देने जा रहा हूं कि अध्याय 12 बेटे, महिला और ड्रैगन की कहानी के अध्याय 12 की मुख्य कथानक है। यह कहानी इस पूरे खंड में घटित होती है और संभवतः अध्याय 13 में भी। यह पूरी कहानी इसका मुख्य कथानक संभवतः दो कहानियों के कारण अस्तित्व में है। उनमें से एक पुराने नियम से आ रहा है और उनमें से एक ग्रीको रोमन दुनिया से आ रहा है। लेखक ने संभवतः एक ऐसी कहानी बनाई है जो जॉन द्वारा उपयोग किए गए कुछ अन्य दृष्टिकोणों से मेल खाती है। जॉन ने अध्याय 12 में एक कहानी बनाई है जो इन दो कहानियों से मेल खाती है। एक पुराने नियम से और एक ग्रीको रोमन दुनिया से। अपने अगले भाग में हम उन कहानियों को देखेंगे और वे हमें पाठ के कुछ विवरणों को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं, और वे वास्तव में पढ़ने और व्याख्या करने और प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और 13 में अतिरिक्त प्रकाश पर नई रोशनी डालने में कैसे मदद करते हैं। यह रहस्योद्धाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह प्रकाशित वाक्य 11-12, सातवीं तुरही, महिला, ड्रैगन और पुत्र पर 17-17 है।